आज है 20 अप्रैल दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। विपक्षी पार्टियों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया।
सो वी हैव मूव्ड अ मोशन फॉर इंपीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
2002 के नरोदा पाटिया हत्याकांड के आरोपों से गुजरात की बीजेपी नेता माया कोडनानी को हाईकोर्ट ने बरी किया, पर सुनिए नरोदा पाटिया की ये महिला क्या कहती है।
अभी माया कोडनानी को छोड़ दिया, उसको धीरे धीरे करके सबको छोड़ देंगे, बाबू बजरंगी को सबको छोड़ देंगे।
और क्या आप भी गणित से डरते हैं? विवेचना में आज राजेश प्रियदर्शी सुनाएंगे गणित की दिलचस्प कहानी, लेकिन ये सब होगा विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को दे दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। अगर ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया तो दीपक मिश्रा महाभियोग का सामना करने वाले देश के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। महाभियोग प्रक्रिया का इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। गुजरात हाईकोर्ट ने नरोदा पाटिया मामले में राज्य की बीजेपी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी को बरी कर दिया है। अदालत का कहना है कि पुलिस ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर पाई जिसने माया कोडनानी को कार से बाहर निकलकर भीड़ को उकसाते देखा हो। माया कोडनानी के पीए किरपाल सिंह छाबड़ा को भी अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में बजरंग दल के नेता रहे बाबू बजरंगी की उम्र कैद की सजा को अदालत ने घटाकर 21 साल कर दिया है। तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली चीन की एक बड़ी कंपनी ZTE ने कहा है कि अमेरिका ने उनके उत्पाद और सॉफ्टवेयर खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाया है उससे उनके लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। इससे पहले ZTE ने कहा कि उन्होंने ईरान और उत्तर कोरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद अमेरिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। चीन की ये सरकारी कंपनी अपने मोबाइल फोन व्यवसाय के लिए अमेरिकी कंपनी के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। कंपनी का कहना है कि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। ZTE के चेयरमैन ये नियमिन ने कहा, इस प्रतिबंध से कंपनी को बड़ा झटका लगेगा और उसका असर कंपनी में काम करने वाले 80,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने की कंपनी की काबिलियत और इसकी जिम्मेदारियों पर भी पड़ेगा। कंपनी के कई हजार उपभोक्ता अमरीका में हैं, जबकि दुनिया भर में कंपनी के लाखों उपभोक्ता हैं। ZTE के चेयरमैन ये नियमिन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। गजा में मेडिकल सूत्रों का कहना है कि इसराइल की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को इसराइल सैनिकों ने गोली मार दी है। इसराइली सैनिकों की गोलियों से 2 अन्य फिलिस्तीनी युवक घायल हो गए हैं। बीते 4 शुक्रवार से हजारों फिलिस्तीनी इसराइल से सटी सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के शुरू होने से लेकर अब तक 30 से अधिक फिलिस्तीनी इसराइली सेना की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। फिलिस्तीनी युवक मोहम्मद अबू मुस्तफा ने कुछ दिन पहले एक झड़प में अपना एक पैर गंवा दिया था। वो कहते हैं, बीते शुक्रवार मैं सीमा के काफी नजदीक पहुंच गया था और मैंने वहां इकट्ठा किए गए टायरों में आग लगा दी। मैं किसी से नहीं डरता, अगर मुझे अपना दूसरा पैर भी गंवाना पड़े तो कोई गम नहीं, क्योंकि ये हमारी जमीन है, उनकी नहीं। ये लोग हमारी जमीन पर आए हैं और इन्होंने हमारी जमीन से हमें निकाल दिया है। फिलिस्तीनी युवक मोहम्मद अबू मुस्तफा के शब्द। राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि महारानी एलिजाबेथ के बाद आगे प्रिंस चार्ल्स इस गुट के अध्यक्ष होंगे। इस फैसले की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी उम्मीद की जा रही थी। गुरुवार को महारानी एलिजाबेथ ने राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी इच्छा है कि उनके बेटे और उत्तराधिकारी एक दिन उनकी इस भूमिका को निभाएं। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। कांग्रेस के नेतृत्व में छह विपक्षी पार्टियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई है। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करके ये नोटिस उन्हें सौंपा। इन पार्टियों ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि हम चाहते थे कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन न आता, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह अधिकार है कि हम मुख्य न्यायाधीश की जवाबदेही तय करें, जैसे कि जनप्रतिनिधि खुद भी जवाबदेह हैं। दिल्ली से सरुप्रिया सांगवान की रिपोर्ट।
सीजीआई के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर 7 दलों के 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के कमरे में इस मामले पर बैठक बुलाई गई थी। चर्चा के बाद सीजीआई के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को नोटिस देने का निर्णय लिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी।
इस प्रस्ताव में जो हमने उपराष्ट्रपति जी को दिया, जो चेयरमैन है, उसमें हमने 5 आरोप लगाए हैं, जिससे साफ तय हो जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।
कांग्रेस का कहना है कि महाभियोग की वजह जस्टिस मिश्रा का मुख्य न्यायाधीश के पद का दुरुपयोग करना है। जस्टिस मिश्रा ने प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में फायदा उठाया और जब इस ट्रस्ट का केस सीजीआई के सामने आया तो उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को किनारे कर दिया। इसके अलावा उन पर एक जमीन अधिग्रहण का आरोप है। इस मामले में उन्होंने फर्जी एफिडेविट लगाया और सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद 2013 में जमीन को सरेंडर किया। उन पर कई संवेदनशील मामलों को चुनिंदा बेंच को देने का भी आरोप है। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को महाभियोग का नोटिस सौंपा है। अगर राज्यसभा के अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया तो दीपक मिश्रा महाभियोग का सामना करने वाले देश के पहले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर महाभियोग प्रस्ताव को लेकर तीखा हमला बोला है। जेटली ने महाभियोग को बदले की याचिका बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि विपक्ष महाभियोग को हथियार बनाकर जजों को डराने की कोशिश कर रहा है। नियम के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच करवाई जाती है। उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही माने। अगर जांच में पदाधिकारी दोषी साबित हों तो सदन में वोटिंग कराई जाती है और अगर वोटिंग के बाद दोनों सदन में यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है, क्योंकि किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। जस्टिस मिश्रा काफी समय से विवादों में चल रहे हैं। इस साल के शुरू में भी उनसे नाराज 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत में चल रही अनियमितताओं का जिक्र किया था। सर्वप्रिया सांगवान, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग की विपक्ष की मांग कितनी जायज, इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 21 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
गुजरात में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की सदस्य रह चुकी माया कोडनानी को गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के दंगों के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोडनानी को निचली अदालत ने नरोदा पाटिया बस्ती में दंगाई भीड़ को मुसलमानों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में 28 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब वो आरोप मुक्त हो गई हैं। सरोज सिंह की रिपोर्ट।
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने माया कोडनानी को कार से बाहर निकलकर भीड़ को उकसाते देखा हो। अदालत ने कहा है कि कोडनानी के खिलाफ बयान देने वाले चश्मदीद गवाह भरोसे के काबिल नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने माया कोडनानी के खिलाफ देर से हुई कार्रवाई शुरू करने को भी उनके बरी होने की वजह बताया। विशेष सरकारी वकील RC कोडेकर ने बताया कि अदालत ने कोडनानी को राहत क्यों दी।
जे निर्दोष ठहरवा आवेल व्यक्तिनी सामे जेनी सामे हमारी एक्विटल अपील हती।
हमारे लिए ये फैसला बहुत अच्छा है। माया कोडनानी के खिलाफ 11 गवाहों ने गवाही दी थी। उनका नाम पहली बार 2008 में SIT के सामने आया। इससे पहले जाँच में उनका नाम था ही नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ SIT के सामने दी गई गवाही के बिना पर किसी को सजा नहीं सुना सकते, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।
माया कोडनानी को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माना जाता था। साल 2002 के बाद वो 2007 में भी विधायक चुनी गई और मंत्री भी बनी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की विशेष टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। बाद में माया को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जल्द ही वो जमानत पर रिहा हो गईं। इस दौरान वो विधानसभा जाती रहीं और उन पर मुकदमा चलता रहा। अगस्त 2012 में नरोदा पाटिया दंगों के मामले में एक विशेष अदालत ने माया कोडनानी को पहले 28 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। वहीं बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सरकारी वकील आरसी कोडेकर ने बताया,
एनिसा में जे पुरावा हता।
बाबू बजरंगी के खिलाफ 5 लोगों ने गवाही दी। गवाहों के मुताबिक जिस भीड़ ने सुबह से दोपहर तक 95 लोगों का कत्ल किया, उनके साथ में बाबू बजरंगी थे। कोर्ट ने उन्हें पूरे षड्यंत्र रचने में दोषी पाया, इसलिए उसकी सजा बरकरार रखी।
अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में दंगों के दौरान 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। हिंसा में 33 लोग घायल भी हुए थे। फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में अयोध्या से आ रही ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए थे। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। नरोदा पाटिया मामले में कुल 62 अभियुक्तों में से 29 को उस वक्त अदालत ने सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया था। बरी किए जाने के इस फैसले के खिलाफ SIT ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। वहीं सजा पाए लोग राहत पाने के लिए हाईकोर्ट गए थे, जिस पर फैसला आज आया है।
ये थी सरोज सिंह की रिपोर्ट। BBC गुजराती सेवा के सागर पटेल अहमदाबाद की नरोदा पाटिया बस्ती पहुंचे और वहां कुछ ऐसी महिलाओं से बात की जिनके परिवार वालों को दंगाइयों ने मार डाला था।
हम अहमदाबाद के नरोदा पाटिया विस्तार में हैं। यहां पे 2002 में दंगे हुए थे, जहां पे नरसंहार हुआ था। आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उसके बारे में हम यहाँ पे जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए।
शरीफा बीबी से। हम पका रहे, नाश्ता कर रहे थे, टुल्ला आया तो चारों मेरी दीवाला तोड़ दी, ये सब कोर्ट खींचे ले थे पीछे। हम भागे, वो SRP में मदद लेने तो वहाँ से भी भगाए पुलिस वाले, जाओ आज तुम्हारा मरवानू से के नेकरो आंती जाओ गंगोत्री बाजू भागे बच्चों को लेके। ऐसे करके छोकरे ने एक ढाबा सुनना था, वो ढाबे पे मैं चली, वो छोकरे को मेरा खींच लिया। मेरा बड़ा छोकरा 17 बरस का था, 18 बरस का सबसे बड़ा, उसको मैं ढाबे पे चढ़ गई दूसरे बच्चे लेकर, छुपके सी बारी में सी देख रही थी मैं। मेरे छोकरे को मार के गिरा दिया, गिरा के उसको पेट्रोल ओकी से मारा, वो चिल्ला रहा था माँ माँ करके चिल्ला रहे, उसको फिर पेट्रोल डाल के चला दिया मेरे छोकरे को। मेरे आँखों से मैंने देखा, मासूम मासूम बच्चों को पानी बांध रहे थे, पानी पानी बच्चे कर रहे थे, उसको भी पेट्रोल पिला रहे थे, टायर बड़ा जलाया तो उसमें फेंक रहे थे, मासूम मासूम बच्चों को छोकरियाँ का बलात्कार कर रहे थे, इज्जत ले रहे थे।
आज कोर्ट का जो निर्णय आया, माया कोडनानी को छोड़ दिया गया, आपने क्या उन्हें देखा था?
गलियां बता रही थी, ये मियां भाई है, ये बच्चे, ये सब मरवा रही थी खड़ी होके। वो सजा उनको मिलनी चाहिए ना, न्याय नहीं मिली हमको तो। अभी माया कोडनानी को छोड़ दिया, उसको धीरे धीरे करके सबको छोड़ देंगे, बाबू बजरंगी को सबको छोड़ देंगे।
क्यों आपको ऐसा लगता है कि सबको?
हमको तो ऐसे ही लगता ही, हमको न्याय नहीं मिला।
मेरा नाम रुखसाना कुरैशी। उस समय हमने देखा था कि पहले मायाबेन कोटलानी अंदर आई थी, आके बाहर निकली, उसके पीछे फिर बहुत बहुत सारा टोला आया था। उसमें हमने अपनी माँ बहन को भी खोया है, मेरी माँ को और मेरी बहन को खोया है। तो मेरी माँ को तो गुप्ती मारी थी सूरज लंगड़े ने, गुप्ती मार के और जला दिया था, और मेरी बहन को जिंदा जलाया था।
ये थी नरोदा पाटिया की कुछ महिलाएं।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब विवेचना, जिसका विषय आज थोड़ा अलग है। गणित की कहानी, वो गणित जिसमें भारत की उपलब्धि न तो शून्य से शुरू होती है और न ही शून्य पर खत्म होती है, उसके आगे पीछे बहुत कुछ है। क्या है वो बहुत कुछ, सुनिए BBC की डॉक्यूमेंट्री स्टोरी ऑफ मैथ पर आधारित राजेश प्रियदर्शी की विशेष प्रस्तुति।
विवेचना। शून्य से अनंत तक, कहानी गणित की, मानवता और गणित,
दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथ गए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है। विज्ञान ही नहीं, कलाएं भी इसी गणित पर टिकी हैं। ये जो आप सुन रहे हैं, ये है 16 बीट्स यानी मात्राओं वाला तीन ताल। एक ज्यादा या एक कम, ये संगीत से शोर में बदल जाएगा। महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने संगीत और गणित का रिश्ता ईसा मसीह की पैदाइश से कई सौ साल पहले खोज लिया था। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों से चलते हैं। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी तरह की कोई रचना संभव ही नहीं। वैज्ञानिक बताते हैं कि कौवे से लेकर चिंपांजी तक कई जीव जंतु 5 से 7 तक गिन सकते हैं। इंसान ने पहले पहल कहां और कब गिनना शुरू किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले लिखने और अंकों को अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे तब बेबिलोनिया कहा जाता था, वहां और मिस्र में मिलते हैं, जहां लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी या भोजपत्र जैसे पत्तों पर लिखते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई हुई सबसे पुरानी चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड। अब से तकरीबन 5000 साल पहले बने पिरामिड इस बात का अंदाजा देते हैं कि ज्यामिति या ज्योमेट्री का विकास भी काफी पहले शुरू हो गया था। जाने माने गणितज्ञ मार्कस दू सौते समझाते हैं कि ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते थे।
For me, the most impressive thing about the pyramids is the mathematical brilliance that went into making them.
मेरी नजर में पिरामिड की सबसे खास बात उसे बनाए जाने में गणित का अद्भुत इस्तेमाल है। ये प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के फॉर्मूले का व्यवहारिक रूप है। प्राचीन मिस्र में एक परफेक्ट समकोण या राइट एंगल बनाने के लिए बराबर दूरी पर गांठ लगी रस्सी का इस्तेमाल नापने के लिए किया जाता था। इसका फॉर्मूला था, पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी 4 गांठ लंबी और तीसरी 5 गांठ लंबी। 5000 साल पहले पत्थर, रस्सी, लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बने चमत्कारी पिरामिड।
मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन, गणित की कहानी का अगला पड़ाव ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हजारों किलोमीटर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही। चीन की दीवार का पहला पत्थर अब से कोई 2500 साल पहले रखा गया होगा। ऊंची नीची जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत दीवार बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी चुनौती है। चीनियों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है। गणितज्ञ मार्कस दू सौते।
The ancient Chinese realized they had to make calculations about distances, angles of elevation and amounts of material.
दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी और उसमें लगने वाले सामान की मात्रा, इन सब का हिसाब लगाया जाना जरूरी था। इंसान शुरुआत से गिनती के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता रहा है। चीनियों का गणित बांस के टुकड़ों के सहारे चलता था। मिस्री, यूनानी या बेबीलोन वालों के मुकाबले एक होशियारी चीनियों ने की, वो था कॉलम बनाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह बहुत बड़ी संख्याएं आसानी से जोड़ी घटाई जाने लगी। इसे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन गए, मगर गणित अब भी अधूरा था। चीनी जोड़ने घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन जब बड़े अंक लिखने होते थे तो उसके लिए उन्हें चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान, चीन, हर जगह लोग अपने कदमों, हाथों की लंबाई या बित्ते से नाप तोल कर रहे थे। कई पत्थर, कहीं बांस, कहीं मिट्टी की गीली पट्टी या रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत में,
जिसने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीनी बेबीलोन वाले भी करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। मगर कहानी का ट्विस्ट ये नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी। वह 10 और दहाई को भी समझता था, सैकड़े को भी, लेकिन उसे लिखा पहली बार भारत ने, उसे एक अंक के तौर पर भारत ने देखा। मार्कस दुसौते बताते हैं,
The Indians transformed zero from a mere placeholder.
भारत ने शून्य को पूरा नया रूप दे दिया। ये पहले सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर था। मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य की जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़े से बड़े अंक को लिखना, उन्हें जोड़ना घटाना अचानक बहुत आसान हो गया, और गणित के पहिए को मानो इंजन मिल गया।
शून्य का विचार भारत के लिए सहज स्वाभाविक था। उसकी जड़ें हिंदू दर्शन में पहले से मौजूद थीं। मार्कस कहते हैं,
In the religions of India, the universe was born out of nothingness.
भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाता है। जब जीरो को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया गया तो उसके लिए नाम पहले से हिंदू दर्शन में मौजूद था, शून्य, यानी कुछ भी नहीं।
7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने का जो तरीका दिया वो आज भी चलन में है और पूरी दुनिया में स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वो ये कि 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाने पर भी 1 ही रहेगा, 0 से गुना करने पर 0 ही रहेगा। लेकिन 0 से जुड़ा दूसरा चमत्कार भी भारत में ही हुआ, ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद। ब्रह्मगुप्त सब कुछ बता गए थे, मगर एक बात रह गई थी, 0 से किसी संख्या को विभाजित करने पर क्या होगा। आकाश भी नहीं था। इस सवाल का उत्तर दिया 12वीं सदी के एक गणितज्ञ भास्कर ने। उन्होंने बताया कि 0 से भाग देने पर परिणाम होगा अनंत। ये अनंत भी हिंदू दर्शन की ही कल्पना थी जिसमें ईश्वर का स्वरूप अनंत बताया गया है। अनंत के आइडिया को कुछ इस तरह समझ सकते हैं।
Brahmagupta's rules about calculating with zero are taught in schools all over the world to this day.
अगर आप एक फल को एक बार काटेंगे तो वो 2 हो जाएगा। इस तरह 2 से 4, 8, 16 और 32, इस तरह ये क्रम बढ़ता जाएगा और आखिर में जब फल का आकार 0 हो जाएगा उसके बाद उसे और टुकड़ों में काटेंगे तो अनंत टुकड़े होंगे जिन्हें गिनना संभव नहीं होगा।
0 और अनंत के बाद एक और कमाल भारत में ही होना था। दरअसल भारत दुनिया का पहला देश था जिसके दार्शनिकों ने इस बात को समझा कि अंक सिर्फ गिनने, जोड़ने या घटाने के लिए नहीं है, बल्कि वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयां हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं हैं बल्कि स्वतंत्र हैं, उनका अपना अस्तित्व है। यही वजह थी कि भारत ने दुनिया को निगेटिव नंबर का आइडिया दिया। मार्कस दुसौते कहते हैं कि भारत के गणितज्ञ निगेटिव नंबर के सिद्धांत से परिचित थे। इस मामले में वे यूरोप से बहुत आगे थे। इसे वे ऋण कहते थे, यानी कर्ज। इसी से शब्द बना ऋणात्मक अंक, जैसे 3 में से 4 घटाने पर क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, वो -1 होगा। ये विचार भी भारत का था।
Now, a plus b the whole squared, right? Okay. So if I have a line, all right? Yes. And I have an arbitrary point over here.
समीकरणों यानी इक्वेशन का इस्तेमाल यूनानी, मिस्री, बेबीलोन वाले और चीनी भी कर रहे थे और अपने अपने तरीके से कर रहे थे। अंक गणित, ज्यामिति और समीकरण, ये सब आपको अब जटिल लग रहे होंगे। ठहरिए, एक और जरूरी चीज जो इन सब से जटिल है, उसका नाम है त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्री। सुनिए मार्कस क्या कहते हैं उसके बारे में।
इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कुड यूज ट्रिग्नोमेट्री टू वर्क आउट द रिलेटिव
डिस्टेंस। महीने में 2 बार जब चांद आधा होता है तो सूरज के ठीक सामने यानी सीधी रेखा में होता है, उस दिन धरती, सूरज और चांद के बीच एक परफेक्ट राइट एंगल यानी समकोण बनता है। वे नाप सकते थे कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला कोण 1 डिग्री का 7वां हिस्सा है। त्रिकोणमिति के साइन फंक्शन से पता चलता है कि 1 डिग्री के 7वें हिस्से का मतलब है 1 का अनुपात 400। इसका मतलब यह है कि धरती से सूरज की दूरी चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक है। यानी भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष नाप रहे थे।
एक भारतीय गणितज्ञ ऐसा है जिसका जिक्र किए बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। उनका नाम था माधव। माधव ने यह साबित किया कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या किसी संख्या में अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं। यानी गौर से सुनिए, शून्य और एक के बीच भी एक अनंत छिपा है, ये बताया माधव ने। गणित जिनका विषय नहीं है और इन जटिल विचारों से ऊब रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी जानकारी। गणित के सबसे जटिल सवाल पाई का मान क्या है, इसका भी जवाब दिया भारत ने। मार्कस,
छठी सदी के भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पाई का मान 3.1416 है। इसके आधार पर उन्होंने धरती की परिधि को नाप दिया। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो लगभग सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इसका पूरी तरह सही उत्तर दिया 15वीं सदी में माधव ने। माधव ने इसके लिए अनंत का सहारा लिया। पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता। पाई दरअसल किसी भी वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात है। जहां कहीं मोड़ या घुमाव आता है, उसे समझने के लिए पाई की जरूरत पड़ती है।
अब देखिए, बीज गणित की तो बात ही नहीं हुई इतनी देर में, जो अरबों की देन है, अल जबरा। क्या करें, समय ही नहीं मिला। समय भी गणित है। ये बेबीलोन के लोग थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा। समय की कहानी फिर कभी, समय मिलने पर।
ये विवेचना आपको दूसरी विवेचनाओं से अलग लगी होगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें भेजिएगा। और यहाँ आपको बता दें कि मानवाधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले न्यायविद और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर का आज देहांत हो गया है। वो 94 वर्ष के थे। जस्टिस सच्चर ने 1952 से वकालत की शुरुआत की थी। दिसंबर 1960 में वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 1985 में वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। रिटायरमेंट के बाद से ही वो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ जुड़े रहे थे। मानवाधिकारों के मुद्दे पर होने वाले तमाम आंदोलनों में जस्टिस सच्चर अपने अंतिम समय तक सक्रिय रहे। और अब एक नज़र खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। खेल जगत की सबसे बड़ी खबर फिलहाल ये है कि आर्सेनल टीम के मैनेजर आर्सेन वेंगर ने 22 साल के बाद आर्सेनल टीम को कहा अलविदा। ये तो बात हुई फुटबॉल की, अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंडियन प्रीमियर लीग की रैंकिंग टेबल्स की अगर बात की जाए तो सबसे आगे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, फिर सनराइजर्स हैदराबाद और सबसे नीचे हैं दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन टीम ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा।
कोहली अकेले अच्छा भी खेल लें, बहुत सारे रन भी बना लें, उसके बावजूद होने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ कोहली के करने से आपको आईपीएल ट्रॉफी मिल जाती तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कैबिनेट कभी खाली तो नहीं होता।
तो इंडियन प्रीमियर लीग में कल मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, और आज अब से कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स के साथ। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब इतना समय नहीं बचा है कि हम मुख्य समाचार सुनाएं, तो कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने, और फेसबुक के जरिए इसे आप तक पहुंचा रही थीं भूमिका राय। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात होगी हमेशा की तरह भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।